आज हम एक ऐसे प्रवासी मजदूरों को से आप लोगों को रूबरू करा रहे हैं जो प्रवासी मजदूर पहले बाहर कमाते थे, अब यहाँ आकर के आइसक्रीम भी अपना शुरू किए धंधा, लेकिन बीच में कुछ लोगों ने इनको कहा कि नहीं आइसक्रीम बेचिए, हमारा बाल बच्चे का तबीयत खराब हो जाएगा, आप आना बंद कर दीजिए हमारे मोहल्ले में। इन वजह से ये फिर तरबूज का काम शुरू करना पड़ा इनको, अपने जीवन और अपने फैमिली को चलाने के लिए प्रवासी मजदूर को किस किस तरह के कामों को करना पड़ेगा पता नहीं। सरकार की नीति की समझ और सरकार की सोच की समझ कि प्रवासी मजदूरों के साथ क्या करना चाहेंगे, आइए जानते हैं हम इसी पर एक प्रवासी मजदूरों के साथ कि उनका विचार क्या कहता है। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम राम कुमार है और मैं प्रदेश गया, जब फिर वहाँ से वापस चला आया और आइसक्रीम बेच रहे थे तो गांव-गांव घूमते थे तो लोग दबाव देते थे, इसीलिए फिर मैंने तारबूज बेचना शुरू किया। तारबूज में भी बहुत लोग दबाव देते हैं कि सरकार ने इस स्थिति रख चुका है, लॉकडाउन लगा चुका है, आप नहीं आइए, फिर भी रोजी रोटी के लिए बहुत प्रभाव पड़ता है, एक वक्त की रोटी पुराने में बहुत दिक्कत पड़ता है, जो कमाते हैं जहाँ से तारबूज उठाते हैं वही मालिक के रुपया चुकता करने में बहुत कठिनाई होता है, इसके वजह से खाना पर बहुत आफत पड़ता है और बहुत दिक्कत की सामनाएं करना पड़ता है।
तो आप ये बताइए कि पूरा अपना परिचय दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और बाहर कौन सा काम करते हैं।
बाहर काम करने के लिए गए, मजदूरी सेटरिंग वाले काम करने गए थे और सिलाई वाले काम करने गए थे और राजमिस्त्री का काम करने गए थे, वो भी काम में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा था, उसमें भी काम नहीं हुआ, बहुत मजदूर ठेकेदार रखा उसके बाद भी लौटा दिया, उसके वजह से फिर हम चला आए गांव में और गांव आए तो फिर ये धंधा शुरू किए तो बहुत दिक्कत को सामना करना पड़ा।
ठेकेदार आपको पैसा दे करके बुलाया था या आप अपने मन से गए थे काम करने?
ठेकेदार पैसा दे कर भी बुलाया तो फिर भी वापस चला आए।
कितने दिन बाद वहाँ से वो वापस भेजा?
वो बहुत मुश्किल से 10 दिन वापस मुझे भेजा दिया।
तो उस बीच में 10 दिन के कामों का क्या, परिवार का स्थिति उस बीच में कैसा रहा होगा?
बहुत दिक्कत के सामना करना पड़ा क्योंकि वो जो भी रुपया था पॉकेट में सारा आने जाने में ही खत्म हो गया था।
परिवार में कितने लोग आप पे आश्रित हैं?
मेरे आश्रित 2 लोग आश्रित है और भाई लोग खुद अथनी करता है तो वो कमाते नहीं है, हम दो जने हैं, हम है और मेरा एक पत्नी है।
माँ बाबू जी क्या करते हैं और भाई का? अभी सब लोगों का पूरा परिवार अलग अलग है या एक जगह, कितने लोगों का परिवार है?
मैं ज्वाइंट पर 5 परिवार हूँ और 5 परिवार मुझसे जुटा हुआ है और मैं पत्नी दोनों मेहनत करता हूँ, इसके वजह से मैं दोनों घर चलाता हूँ।
आपकी पत्नी कहाँ काम करती है?
वो गांव में ही काम करती है।
तो गांव में तो मुखिया के द्वारा काम दिया जाता है, क्या आप लोगों को नहीं दिया गया?
मुखिया मुझसे रूबरू नहीं हो पाया, उससे मुझे कोई संपर्क नहीं।
जॉब कार्ड बनाए थे आपकी? नहीं
जॉब कार्ड नहीं है।
जॉब कार्ड के लिए बनाने के लिए आपकी पत्नी का बना हुआ है?
नहीं, किसी की नहीं बना हुआ।
तो मुखिया आज तक वार्ड मेंबर को, आप इस चीज के लिए आगे बढ़े थे कि नहीं?
आगे बढ़े थे फिर भी फ्लॉप्स हो गया, उसके बाद बोला कि अभी नहीं बाद में आओ, अभी नहीं बाद में, इसके वजह से कठिनाई का सामना ही करना पड़ रहा है, दिक्कत ही दिक्कत।
आपके तरह कितने लोग आपके गांव में होंगे ऐसा जो प्रवासी मजदूर हैं जिनका जॉब कार्ड नहीं बना हुआ है? सरकार ये दावा कर रही है कि हम जॉब कार्ड देते हैं, नौकरी देते हैं, काम देते हैं, लेकिन काम नहीं मिल रहा है।
अगर सरकार गिनती करना शुरू करे तो गिनती भूल जाएगा, इतना लोग मजदूर बैठा हुआ है।
अभी कोरोना का जो ये स्थिति चल रहा है, को स्थिति में आप कैसे सोचते हैं, इंजेक्शन को लेकर के, मौत को लेकर के कैसे सोचते हैं?
मौत क्या, भूखा ही मर रहे हैं और इंजेक्शन लगाएंगे तो और मर जाएंगे, पहले तो पेट में अनाज रहेगा तभी तो इंजेक्शन लगाएंगे, भूखा पेट तो लगा नहीं सकते हैं, पहले पेट के लिए जुगाड़ करेंगे तब तो इंजेक्शन जुगाड़ करेंगे।
आप ये अभी जो काम कर रहे हैं, तरबूज बेच रहे हैं, ये तरबूज में कितना का प्रॉफिट होता है?
मेरे को प्रॉफिट इसमें 250 रुपया 200 रुपया बनता है, उसमें भी माल बिका नहीं बिका रखा हुआ पड़ा हुआ है, जिधर जाते हैं उधर 2 गालियां सुनना पड़ता है, बोलता है कि सरकार इधर मन बंद कर दिया है मत आओ, तो फिर क्या कर सकते हैं, कोई काम के लिए बैठे हुए कोई काम भी नहीं है।
तो आपको नहीं लगता है सरकार को आपको मनरेगा के तहत काम देना चाहिए, आपके परिवार को जो भी प्रवासी मजदूर है उसको देना चाहिए?
अगर सरकार देगा मनरेगा के ओर से तो हमें बहुत खुशी होगा, इतना परिश्रम करना नहीं पड़ेगा, दुख से बहुत ऊपर उठ जाऊंगा, नहीं तो अगर सरकार कुछ हाथ नहीं बताया तो ऐसे तो परिश्रम को सामना करना ही पड़ेगा।
अच्छा, ये लास्ट में एक हम सवाल पूछेंगे इंजेक्शन को लेकर के, जो अभी चल रहा है कि इंजेक्शन लेना ही चाहिए 18 वर्ष के ऊपर से, तो आप किस तरह से सोचते हैं इंजेक्शन को?
देखिए, इंजेक्शन एक इतना तो हम नहीं बता सकते हैं, पर फिलहाल में इंजेक्शन लगाने की हम रूबरू नहीं है, क्योंकि मर जाना ठीक है पर इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, क्योंकि इंजेक्शन हमें शरीर के ज्यादा हानि पहुंचाएगा। ऐसे हानि पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मर जाएंगे भूखे, ठीक है, पर इंजेक्शन में बहुत हानि पहुंचेगा, ये इतना जरूर जानते हैं।
तो परिवार के अभी जो आपका समय जो चल रहा है पिछले कोरोना से लेके अभी तक, एक साल हुआ ना, एक साल के बीच में आपके परिवार का स्थिति क्या है? पूरा क्या?
बहुत गंभीर है, अगर देखा जाए तो बहुत गंभीर है, क्योंकि उसमें पहले अच्छा से खाना पीना हर चीज का सुविधा मिल जाता था, खा पी लेते थे, दो वक्त की रोटी भी मिलता और कमा भी लेते थे। अब दो वक्त की रोटी छोड़ी एक वक्त पर भी सोचना पड़ता है।
तो आप, हम ये सोचना चाह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह से अभी आपका मतलब ये चलेगा और आने वाले समय में आप क्या सरकार से कहना चाहेंगे?
अगर ऐसी तरह चलते रहे तो पूरा का पूरा मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, जैसे हम चल रहे हैं।
किस तरह से, ऐसे परिवार कितने होंगे आपके इलाके में या आपके साथ, क्या अंदाजा करते हैं?
मेरे साथ तो मेरे उस एरिया में बहुत परिवार है, बहुत जुटा हुआ, और सब मजदूर काम धंधा करने के लिए बेरोजगार बैठा हुआ है।
कहाँ घर हुआ आपका?
कापन।
पूरा एड्रेस क्या है?
पूरा एड्रेस कापन विभूतिपुर थाना
समस्तीपुर।
जी समस्तीपुर।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। आपने सुना कि आपने किस तरह से प्रवासी मजदूरों की जिंदगी चल रही है और ऐसे में क्या सरकार की नीति होना चाहिए, इन सरकार के पीछे क्या सोच होनी चाहिए, ऐसा कोई किसी भी तरह का सोच नहीं है, इन प्रवासी मजदूर का कहना है। हम चाहेंगे कि ऐसे प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द मनरेगा के तहत रोजगार दिया जाए ताकि ये अपने परिवार को सुरक्षित चला सके और ये इनका सहयोग परिवार में मिल सके पूरे परिवार के साथ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।